Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani sallallahu 'ala Muhammad sallallahu 'alayhi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Majid fa'ud billahi minash shaitanir rajim. Wa istudna 'alayhim ayatuna bayyinat. Qala alladhina لا يرجون لقاءنا فإتي بقرآن غير هذا أو بدله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دائس پر تشریف فرما قائدین جماعت بنگلور شہر میٹرو کے اس ماہانہ اجتماع میں شریک خواتین حضرات مسرت کی بات ہے کہ ایک مدت کے بعد آپ کے آج کے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی. چونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے تنہیدی گفتگو کے بجائے رات موضوع پر آتے ہیں. آج کا جو ماہانہ اجتماع ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کے درس قرآن سے جس کی شروعات ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرامین ہیں احکام ہیں قوانین ہیں شریعت ہے اس کے اتباع امت مسلمہ کے لیے لازم ہے فرض ہے اس کے ایمان کا جز ہے اس میں کوئی چینج نہیں کیا جا سکتا. یہاں سے وہ گفتگو شروع ہوئی تھی اور ہمارے ایمان کی پختگی کا یہ اظہار ہے. ظفر الحسن برادرم نے پارلیمنٹ میں جو مختلف بل پیش ہوئے اس کے سلسلے میں بعض باتیں بتائیں اور کہا کہ ہم لوگوں کو باشعور سٹیزنس کی حیثیت سے ان سے واقفیت رکھنی چاہیے اور وہ جو ڈیپ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں کلچرل لیول پر سوشل لیول پر ان کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے. نہ صرف وہ پولیٹیکل بلز ہوتے ہیں بلکہ اس کے ڈیپ امپیکٹ جو ہے ہماری سماجی اور روایتی اور تہذیبی زندگی پر بھی پڑتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ تھا جو ہمارے لیے قابل غور ہے. تو ان بلز کا مطالعہ اس پرسپیکٹو سے کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے کاشف صاحب نے ٹرپل طلاق بل کے حوالے سے آرڈیننس کیا ہے بل کیا ہے اور پارلیمنٹ کا اس کا کیا رویہ ہے, پھر فیضان مصطفی صاحب کے آرٹیکل کے حوالے سے کچھ مفید باتیں ہمارے سامنے انہوں نے رکھی ہیں. محترمہ احمد الرضا صاحبہ نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار سے بات کرنے کے بعد باتیں بتائی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ چاہتا ہے کہ دارالقضا قائم ہو, اس کا نیٹ ورک ہو اور دلی سے لے کر گلی تک ڈفرینٹ جگہ ہر اس کی یونٹس بنے. تو یہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اور آخر میں ڈاکٹر صاحب اپنے کہ آپ کی جو طبیعت ہے آپ کا جو مزاج ہے شورا میں بھی آپ بہت ہی بے لاز باتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ سے. ویسے ڈاکٹر بلجامی صاحب بھی سرجری کرتے ہیں, آپ بھی سرجری کرتے ہیں, آپ انستھیشیا دے کر کرتے ہیں, آپ اس کے بغیر کرتے ہیں لیکن اس میں پین نہیں ہوتا. تو مرکزی شورا میں بھی آپ میں سرجری کرتے ہیں اور بلا جھجک کے سلیقے پہ اگر بات کی جائے تو امیر جماعت کی گفتگو پہ بھی تنقید کی جا سکتی ٹوکا جا سکتا ہے شورا کے لیول پر ہر آدمی کے لیے نہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہاں مرکزی شورا میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے خود ہم کو انٹروسپیکشن کرنے کا خود غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی باتیں بھی کافی مفید رہی. میں اب اپنی بات پہ آتا ہوں. ہم ایک ایسے دور میں جیتے ہیں. پوسٹ ماڈرنزم ان اسلام نام کی کتاب آئی تھی ڈاکٹر ایس اکبر ایس احمد کی, انہوں نے بتایا کہ ہر صدی کی نمایاں خصوصیت ہوتی ہے اور کسی زمانے میں جو ہے 17ویں صدی کا زمانہ جب آیا تو اسے انلائٹنمنٹ کا زمانہ کہتے تھے, 18ویں صدی کا زمانہ آیا تو ریشنلزم کا زمانہ, اس زمانے میں بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مذہب اور ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آدمی کی عقل کافی ہے رہنمائی کے لیے. تو ریشنلزم کا زمانہ 18ویں صدی کا, 19ویں صدی کا زمانہ آیا تو وہ ڈیولپمنٹ کا زمانہ آیا سائنس میں ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی, 20ویں صدی کا زمانہ آیا تو ایک دم اینگزائٹی کا زمانہ. اب جس 21ویں صدی میں پوسٹ ماڈرن ایرا میں پہنچے ہیں اس ماڈرن ایرا کی دو خصوصیات خود وہ بھی لکھتے ہیں اور دیگر لوگ بھی لکھتے ہیں, وہ ایک ہے سینیسزم اور سکیپٹیسزم, یعنی مایوسی کا دور اور شک کا دور, کسی بات پہ بھروسہ نہیں, کسی بات پہ اعتماد نہیں اور انسانوں پر ایک قسم کی مایوسی چھائی ہوتی ہے اور کہیں کوئی خیر نظر نہیں آتا. یہ اجتماعی گویا کہ پوری صدی پوسٹ ماڈرن ایرا کو دو جملے میں بیان کیا گیا. अब इस पहलू से आप देखेंगे कि जो कुछ डेवलपमेंट हिंदुस्तान में भी हो रहा है, जितने बिल पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं, जो जजमेंट हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन सब में आप देखेंगे कि स्केप्टिसिज्म और सिनिसिज्म कोई चीज इस वक्त दुनिया में मोतबर नहीं है, न मजहब, न अखलाक, न नफ्स, न जमीर। इंसान जो चाहता है वो करे, किसी चीज का भरोसा बाकी नहीं रहा, न मजहब का रहा, न रिवायतों का रहा, सबके बखिये उधेड़ दिए गए और इंसान को मादर पिदर आजाद कर दिया गया। अब उसे कोई पूछने वाला नहीं, कोई बंदिश नहीं, न मजहब है, न कानून है, न तहजीब है, न रिवायत है, हर चीज आजाद कर दिया गया। ये गोया कि बिल्कुल भी आई नहीं, आज के दौर में यही हो रहा है, स्केप्टिसिज्म का और सिनिसिज्म का, मायूसी का, लाखैरेपन का, और उसके अलावा शक और तशकीक, हर चीज में तशकीक नजर आती है। तो अब मजहब की जो बुनियादें थी, शरीयत और ये सब चीजें तो बात की, उस पर भी अब क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। ये इस दौर में हम जी रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को जिन कॉलेज स्कूल में भेजते हैं वो यही मिजाज लेकर आते हैं, इसलिए हमारे लिए बड़ा अब हिल टास्क होता है बच्चों को रिवायात, तहजीब, अकदार, वैल्यूज, रिलीजन, उस पर कन्विंस किया जाए। वरना वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी बोलते हैं, वो जिना पर जो सजा जो दी जाती है उसके खिलाफ भी वो बोलते हैं, इसलिए मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में वो बात करने के आदि हो गए, उसका तरीका वो सीख गए। जहां हम भेजते हैं बच्चे वहीं पढ़कर आते हैं, नेक्स्ट जनरेशन उम्मत मुस्लिम का यही होगी। तो बहरहाल इसमें हम लोगों की, तहरीक के लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम कैसे जो है इन चीजों को, जो कुलिया थी, जो प्रिंसिपल थे, जो बदीही हकीकत थी, जो ऑन्टोलॉजिकल फैक्ट थे, उस पर हम कैसे अपने नेक्स्ट जनरेशन को मुतमईन करें, हमारी जिम्मेदारी। अब मैं आता हूँ स्ट्रेट अवे ट्रिपल तलाक के मौजू पर। मुझे उस बिल पर, उस ऑर्डिनेंस पर, उस पर कुछ नहीं बोलना है, बहुत कुछ बातें आ चुकी हैं और हम व्हाट्सएप की दुनिया में आज हर बच्चा जानता है। मुझे तीन चार बातें इस हवाले से करनी। पहली बात ये कि ये बिल जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उसके पीछे एक तहरीक है और वो तहरीक एक उसका अपना सोचा समझा मंसूबा है, और लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं, 2025 जब आएंगे तो उस तहरीक बने हुए 100 साल हो जाते हैं। वो बिल्कुल अपने पाठ पर चले जा रहे हैं, अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और जो कुछ उन्होंने किताबों में लिखा है, बंच ऑफ थॉट में लिखा है, वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड, इस तरह की किताबें जो कुछ उन्होंने बातें लिखी, बिल्कुल हू बहू उसी रास्ते पर वो चले जा रहे हैं और अपने मंजिल के करीब ही। तो तहरीकों को अल्लाह ताला दुनिया में मौका देता है, तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को पाया है, उसके करीब है, और भी मजीद काम करेंगे, कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं। आज उन्होंने ट्रिपल तलाक को इस्तराब किया, कल जो है वो ताज्जुद अज़वाज को इस्तराब कर सकते हैं, परसों जो है वो हलाला को इस्तराब कर सकते हैं, उसके बाद जो है दो बच्चे एक बच्चे के कानून भी ला सकते हैं, उसके बाद अब्दुल्ला मोहम्मद सलीम ये नाम नहीं रखना चाहिए, कानून भी ला सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए वो अपने गोल की तरफ। क्वेश्चन ये है कि हमने बहसे तो उम्मत मुस्लिम है, तहरीक इस्लामी नहीं कहता हूं, हमारे पास क्या गोल रहा, हम आपस में जो है इंतजार का शिकार रहे, हमारा कोई हजफ और कभी गोल नहीं रहा, हर मसलक का आदमी इसी पर लगा रहा कि अगर उसके मसलक को दूसरों पर थोपा जाए, उसकी हकानियत साबित की जाए, उसकी जमात को फरोग दिया जाए। गुज़िश्ता 100 साल की हमारी तारीख बताती है कि एक सिर्फ तहरीक इस्लामी है जिसके पास एक हजफ था, गोल था, मकसद था, और उसके राह पर वो गामजन रही है। बाकी लोगों का सवाल ये है, अब ये है कि इधर 15-20 साल से हमारा एक ही नारा है उम्मत मुस्लिमा का, ये फला ना आए इख्तदार पर। दुनिया में ऐसा गोल होता ही नहीं, नेगेटिव गोल के साथ कोई जीता है, ये फला ना आए, क्या आना चाहिए वो तो बताना चाहिए ना, कि हम क्या चाहते हैं हिंदुस्तान में। वो लोग तो हुकूमत का मंसूबा लेकर आगे बढ़े और हुकूमत बना लिए, हमने कौन सा मंसूबा बनाया, हुकूमत का मंसूबा नहीं बनाया, हमने मंसूबा सिर्फ बनाया कि वो ना आए। और दुनिया का कानून है कि जब आदमी किसी चीज से डरता है तो वो लाजिमन उस पर मुसल्लत हो जाती है, ये दुनिया का कानून है। वह फिरौना व हामाना व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून, वनूरिया कुरान ने कहा, वनूरिया फिरौना व हामाना व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून, फिरौन को एक बात का डर था, मूसा के पैदा होने से पहले एक बात का डर था, उसे भी डर था, फिरौन की भी डर था, हामान खारून सबको डर था, और हमने उसके डर को सच्चा साबित कर दिखाया। जिस बच्चे की पैदाइश से उसे डर था कि उसकी सल्तनत मुतजलजिल हो जाएगी या उसका उरूज या उसकी सल्तनत गर्कयाब हो जाएगी, आखिर उसी बच्चे के हाथों जो उसकी सल्तनत खत्म हो गई। ये दुनिया का उसूल है कि आदमी जिस चीज से डरता है वो उस पर मुसल्लत हो जाती है। तो डर हो नेगेटिव गोल के साथ, वो तो पॉजिटिव गोल के साथ चले, उनको करना है। मुसलमानों को जो है उन्होंने बताया कि उनका मुकाम क्या है, किताब पढ़कर देख लीजिए, उन्होंने कहा कि या तो एसिमिलेट हो जाइए, एसिमिलेशन उन्हें बताया, या एनिहिलेट, या उनको जो हम खत्म कर देंगे इस दुनिया से, या सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखेंगे, वो सारा फॉर्मूला उनका मौजूद है। क्वेश्चन उम्मत मुस्लिमा से ये है कि इस चौराहे पर आकर, या कल्टीसैक कहते हैं इंजीनियरिंग में, ऐसी जगह जहां आगे रास्ता नहीं पीछे पलट के आना पड़ता है, तो ऐसी कल्टीसैक पे पहुंचकर हमारा क्या हदफ है, हमारा क्या गोल है, हमारा क्या मकसद है उम्मत मुस्लिमा का। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि तहरीक का मकसद ये है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक हुसूल कुव्वत। हुसूल कुव्वत कभी था ही नहीं हमारे पास तस्वूर में, वो तो गैर दीन समझा जाता था। मौलाना मौदूदी ने जब हुकूमत की बात कही तो उसे तो दीन से खारिज किया गया, और आज सब लोग कहते हैं सब दीन का हिस्सा बनना चाहिए। तो पहला ये है कि ये ट्रिपल तलाक वाला जो बिल है अभी आए नहीं, ये बिल्कुल अपने मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, और इसका जवाब यही है कि हक आलमबरदार हक का परचम लेकर आगे बढ़े, उसके बगैर इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, फर्स्ट एड सोल्यूशन इसका नहीं पाया जाता। दूसरी बात यह है कि गलती उधर ही नहीं है, गलती इधर भी है। ट्रिपल तलाक बिल के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, गलती सिर्फ उनकी नहीं है, गलती हमारी भी है, हमारे सफों के अंदर भी है। और ये बात मैंने बताई कि मौलाना मौदूदी ने 80 साल पहले लिखा, और बहुत से लोगों ने भी लिखा कि जो शरीयत एक्ट बिल जिसे लेकर हम चलते हैं, और जो हमारे पास मुदव्विन फिक्ह के हवाले से जो बातें करते हैं, उसमें मौलाना मौदूदी ने तो इतनी सख्त बातें कही, बातें क्या पढ़ कर देख लीजिए, कहा कि तकलीद के बारे में लोगों ने समझ लिया है कि उलमा की तकलीद करना अइमा अंबिया की तकलीद के बराबर लोगों ने समझ लिया, और हमारे उलमा की काबिशों को, उनकी इल्मी काबिशों को, उनकी बातों को हम कुरान का दर्जा दे देते हैं, उनको हम नदियों का दर्जा दे देते हैं, और एक आम आदमी की तकलीद का मामला अलग है, लेकिन एक आलिम के लिए, एक मुहक्किक के लिए तकलीद करना एक अलग दर्जा है। दो अलग अलग चीजें, एक आमी तो तकलीद कर सकता है, लेकिन एक आलिम और मुहक्किक अपने जमाने के लिहाज से हम आहंग करके कुरान और सुन्नत की बातों को पेश करना चाहिए। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात ही बयान की है कि फरमाया कि ये जो इस्तिंबात करना है, इस्तिंबात करना है, डेड्यूस करना है, ड्राइव करना, आज के हालात के लिहाज से कानून का वजह साजी, कानून को वजह करना, उस पर उन्होंने कहा कि साहब ये लोगों ने तसव्वुर कर लिया कि चार सदी तक ये हलाल था, अब उसके बाद ये हराम हो गया। चार सदी तक तो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर हमारे उलमा अइमा उसको डिड्यूस करते थे, इस्तेमाल करते थे, हालात के लिहाज से नई नई बातें पेश करते थे, अब कोई करना नहीं चाहता, जरूरत नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। ये वक्त की जरूरत है कि इसमें जो चीजें गलत हैं उसको तरमीम किया जाए, या गलत नहीं लेकिन उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि तसलीसात सलासा, मौलाना मौदूदी ने उस पर एक अलग ही एक टॉपिक ही बना दिया है, दर मजलिस वाहिद तत्लीकात सलास दर मजलिस वाहिद, यानी एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक देने पर मौलाना ने कहा कि ये तो मासियत है, ये गुनाह है, लेकिन इसकी लीगैलिटी कायम होती है, औरत को हक मिलना चाहिए कि वो कोर्ट में जाए और हर जाना मंगवाए, माने मनवाए, और उसे जो है वो कंपनसेशन मिलना चाहिए, इसलिए कि एक जुल्म है औरत पर। यही नहीं, आज आप देख लीजिए कि केसेस इतने आते हैं कि मर्द कहता है कि मैं ना तलाक दूंगा ना मैं खुला दूंगा, जहां लटक लटका के रखता है, और दारुल खजा में बुलाए तो आता नहीं, इसलिए दारुल खजा का वो वजन नहीं है, वो वेट नहीं है, और वहां जाने के बाद आदमी को ये इत्मीनान नहीं है कि साहब वहां रैशनलिटी की बुनियाद पर, कुरान और शरीयत की बुनियाद पर, और इंसाफ की बुनियाद पर फैसला होगा, ऐसा होता नहीं, तो इत्मीनान भी नहीं होता, तो बहुत से लोग आते भी नहीं। औरत लटकती रहती है, खुला भी उसे नहीं मिलती, तलाक भी उसे नहीं मिलती, उसके साथ जुल्म का रवैया होता है, तो उसके लिए कुरान में फस्ख निकाह इस्लाम में जो था उसका भी कोई प्रोविजन अब बाकी मौजूद नहीं रहा। तो इन सब मामले में जहां औरत पर मजलूमियत है, तो उसको दूर करने के लिए बहसत मजमूई उम्मत क्या करे, इस पर गौर करना, इस पर कुछ कानून बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा आज के जमाने में कि एक मजलिस में जो तलाक दे देते हैं लोग, उसके लिए कुछ सजा भी मुकर्रर होनी चाहिए, जैसे कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने मुतय्यन किया था। ये सब बातें गौर फिक्र करने की, इस पर जो है डीपली सोचना चाहिए। हमारी बात खवातीन ने मुस्लिम प्रसन्ना में मोहतरमा राजेशा जी अगर ये बताती तो अच्छा था, लेकिन ये है कि हम भी बहरहाल जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा वही धर्रे में बहते हैं। हम जो है जमात की और तहरीक की खसूसियत ये थी कि मौलाना मौदूदी खड़े होकर उस जमाने के जितने जो है वो मकतबे फिक्र थे उसमें कहीं फॉल्ट पाते तो लाजिमन में बबांगे दहल कहते थे। हम नहीं बोलना चाहते, अब हम बोलेंगे तो हम डरते हैं कि सब दियोबंदी नाराज हो जाएंगे, अहले हदीस हमसे नाराज हो जाएंगे, हम पता नहीं क्या हो जाएंगे, ये हमको डर होने लगता है। हालांकि खवातीन ने आज से कम से कम 20 साल पहले मॉडल निकाह नामा पेश किया था, उसमें इशराक की निकाह कहती, उस पर एक पूरा जो है एक तफीम उसकी किताब है,
इशराक बिन निकाह का मतलब है निकाह के बस पास कंडीशन औरत लगा सकती है, उसमें से ये कंडीशन भी हो सकती है अगर तुमने तीसरी शादी दूसरी शादी की तो तलाक जो है ऑटोमेटिक वाकई हो जाएगी, अगर तुमने ट्रिपल तलाक दिया तो इतना हरजाना देना पड़ेगा और मेरे मेयार के मुताबिक घर देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, जो कंडीशन में लगाना चाहती है इशराक बिन निकाह कहते हैं वो अप्लाई कर सकती है। उसमें यह भी हो सकता है कि तुम तलाक नहीं दे सकते, अगर इख्तलाफ हो तो खुला का इख्तियार मेरे हाथ में होना चाहिए और तुम उस वक्त मैं जहां बोलूं साइन कर दोगे। ऐसे बहुत से क्लॉजेस है, मॉडल लिखा नाम प्रेजेंट किया लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में वो रिजेक्ट हो गया। तो बाद खवातीन जो बड़ी नीचे खवातीन थी जो उलमा के खानदान से खानदान नस्लन बादा नस्लन जो उलमा उनके यहाँ थे, ऐसी औरतें जो बिल्कुल जो है इल्मी खानवादे से आई थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से निकल गई। इसलिए कहा वो जो मॉडल निकाह नामा था जिसमें औरत के एम्पावरमेंट का एक जरिया था, निकाह के वक्त जो है मर्द को बताया जाता था कि ये कंडीशन होंगे जिस पर हमारी शादी हो रही है और इस कंडीशन को तुम पूरा नहीं करते तो ऑटोमेटिक तलाक भी हो सकती है, ट्रिपल तलाक दोगे तो इतना जो है तुमको जुर्माना देना पड़ेगा या मैं जब पूछूं तो खुला तुमको देना पड़ेगा। ऐसे और बहुत से क्लॉजेस हो सकते हैं जो उन्होंने पेश किया लेकिन हमने उसे आगे नहीं बढ़ाया। प्रॉब्लम यह है कि आज भी मॉडल निकाह नामा का मौका है, उस पर रिव्यू किया जा सकता है और औरत जो इस वक्त मजलूम है हमारे आमाल की वजह से, शरीयत में नहीं बल्कि मुसलमानों की वजह से, मुसलमानों में जो अनपढ़ होते हैं या गलत लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी शरीयत और पूरी उम्मत रुसवा होती है, तो मॉडल निकाह नामा पेश किया गया वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। तो इस पर भी गौर करने की जरूरत है। ये दूसरा मौजू है, पहला मौजू मैंने बताया कि जो लोग लाना चाहते हैं वो अपने अपने अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं और अपने रास्ते पर हैं, उसका जवाब यह है कि हम भी हक के अलमबरदार तहरीक जो है वो पॉजिटिव गोल लेकर चले। दूसरी बात मैंने अर्ज किया आपके सामने वो ये कि जो शरीयत हमारे पास जो सख्त मौजूद है उसमें मैंने बताया कि ये पार्ट ह्यूमन पार्ट डिवाइन है, खुदा की शरीयत के साथ उलमा का इस्तिंबात वगैरह है और आज के जमाने से नए इस्तिंबात करना, नए कानून को जो है उससे इस्तकरार करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तीसरी बात यह कि इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है वो ये है कि सिर्फ मुसलमानों में कम है और लोगों में ज्यादा है, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज कराते हैं, शादी से पहले लाजिम होता है चर्चा को जाना कोर्सेज करवाना। अभी हमारी सफों में जमात के सफों में थोड़ा बहुत ये शुरू हुआ है लेकिन मुझे जहां भी जाने का मौका मिला तो अभी भी उस पाए का उस मेयार का वो कोर्स नहीं है जिस कोर्स के गुजरने के बाद एक औरत भी पुख्ता हो जाए, एक मर्द भी पुख्ता हो जाए और शादी के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ट्रिपल तलाक हो या इस तरह की जो भी और जो जालिमाना रवैया लोग इख्तियार करते हैं उन सब से रुकने के लिए उसमें ऐसी पुख्तगी अभी हमारे कोर्सेज के अंदर नहीं आई है तो वो कोर्सेज हम चलाएं। इसी तरह काउंसलिंग सेंटर की हम बात करते हैं लेकिन काउंसलिंग सेंटर जो होते हैं वो सिर्फ ये है कि लड़का और लड़की डिस्प्यूट लेकर आए जरा नसीहत करके भेज देते हैं, अल्लाह रसूल का डर दिलाकर भेज देते हैं, ये काउंसलिंग नहीं है। काउंसलिंग ये है कि इश्यू क्या है देखा जाए, कहां पानी मर रहा है वो देखा जाए, कहां जो शू पिंच कर रहा है वो देखा जाए और उसके बाद बताया जाए कि इसका सलूशन क्या है, उनको गाइड किया जाए, खुद उनके अंदर से सलूशन आना चाहिए। ये है काउंसलिंग के आदमी को ऐसा खिताब किया जाए, ऐसे उसके जहन को डाइवर्ट किया जाए कि वो अंदर की तरफ जाए, खुद वो सलूशन निकाल कर ले आए। तो काउंसलिंग के जो बुनियादी जो जो उसके उसूल है उससे वाकिफियत होनी चाहिए। एक है ले मैन काउंसलर जो कि बिल्कुल कुछ नहीं जानते, बस बिठा कर कुछ नसीहत कर सकते हैं और कुछ बड़े हैं खानदान के उनका रोब होता है जिसके नतीजे में कुछ काउंसलिंग कर देते हैं। एक होता है मैच्योर काउंसलर, यानी हम में से हर आदमी बन सकते हैं थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशन करने के बाद मैच्योर काउंसलर बन सकते हैं। एक होता है प्रोफेशनल काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर उसकी तालीम होती है, उसका तजुर्बा होता है। तो बहरहाल काउंसलिंग सेंटर, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज, ये वो असल में इश्यू का एक सोल्यूशन की तरफ एक हल है, कई हल में से एक हल है जो हम कर सकते हैं जो हमारी भी साथ में। आखिर बात यह है कि मैं एक बात अर्ज करता हूं, जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है कोई नई बात नहीं है। इस्लाम को नरम किया जाए, इस्लाम के अंदर तब्दीली लाई जाए, इस्लाम को जो है जमाने के साथ हम आहंग किया जाए, ये लोगों की ख्वाहिश है। अभी आप देखेंगे कि चाइना जो है सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम के नाम से प्रोजेक्ट है कि चाइना के जो मुसलमान है वो इस्लाम उनका चाइना से हम आहंग हो जाए, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। मुझे एक जगह ईस्ट तुर्किस्तान के एक बड़े लीडर से मुलाकात का मौका मिला, तफसील से उन्होंने बताया जो हमारे पास इसका इल्म नहीं है कि चाइना में जो कुछ मुसलमानों के हैं पर्टिकुलरली वो उइगुर मुस्लिम जो है, उइगुर मुस्लिम वहां नाम अब्दुल्ला अल्लाह के नाम के साथ नहीं रख सकते, नबी के नाम के साथ नाम नहीं रख सकते, घर में मुसल्ला नहीं रख सकते, पुराने मजीद नहीं रख सकते, तस्बीह नहीं रख सकते, बहुत सी पाबंदियां उन्होंने लगा दी, लाखों लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में लगा रखा है और चाहते हैं कि इस्लाम को जो है चाइना से हम आहंग करें। अमेरिका का एक प्रोजेक्ट है और रैंड कॉर्पोरेशन की किताब आई तकरीबन 2 साल पहले बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क के नाम से, उस किताब को पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। उसमें यह कहा गया कि मॉडरेट मुस्लिम का मतलब यह है कि इस्लाम का वो खाका, इस्लाम का वो नक्शा और इस्लाम की वो हैयत जो हम पेश करते हैं, ये नहीं है कि सर हम थोड़ा सा उसमें से लिबरल लोगों को उठाएंगे, नहीं, इस्लाम को मोल्ड करेंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, और उसका जो वो समझते हैं कि जो उसका एग्रेसिव स्टाइल है दुनिया में छा जाने का, उसको खत्म करके सब्ड्यू करके मुती और फरमाबरदार बनाकर उसे रखना है। ये मॉडल हमारा दिया हुआ है, और दुनिया में ऐसे मॉडरेट मुस्लिम, मॉडरेट का मुस्लिम मतलब हमारे जहन में जो है वो नहीं है जो एक्सट्रीम बातें नहीं करता, जो जरा अदल की बात करता, वो नहीं है। मॉडरेट मुस्लिम का पूरा डेफिनेशन है कि वो शराब भी पिएगा, वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी बात करेगा, वो जो है औरत और मर्द मीरास में दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, उसके लिए वकालत करेगा, और न जाने क्या क्या चीजें, पूरा मार्कर इश्यू बताया गया है कि कौन मॉडरेट मुस्लिम है। तो पूरी दुनिया में ये चल रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, ये तो यहाँ पे तब्दीली की बात है। इससे ज्यादा जोर शोर के साथ मुस्लिम ममालिक के अंदर इस किस्म के लोगों को उठाया जाता है और मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क बनाया जा रहा है। अब तो वो ममालिक जिनके जिनके यहाँ जो है इस्लाम का डंका बजता था और लोग समझते थे कि इस्लाम का मॉडल है, अब आप गूगल में जाकर टाइप कीजिए हलाल डांस, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा हलाल डांस क्या है, और हलाल जुआ मिलेगा आपको, सब चीजें आपको मिल जाएंगे। तो अब ये सब बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क का प्रोजेक्ट है दुनिया में। तो हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वही चाइना में भी हो रहा है, वही अमेरिका में भी हो रहा है, वही जो है अरब के सॉइल्स में भी हो रहा है, हर जगह जो हो रहा है, पूरी दुनिया। कुरान कहता है, ये भी कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। कुरान कहता है कि वैसला अलैहिम आयातुना, जब हमारी आयतें इनको पढ़कर सुनाई जाती थी कुफार और मुशरिकीन को, قال الذين لا يرجون لقاءنا, जो लोग हमारी तरफ पलट कर आने की तवक्को नहीं रखते, जिनको ख्याल भी नहीं कि खुदा ताला के हुजूर खड़े होंगे, वो कहते हैं ईती बिकुरान गैर हाजा, कि इस कुरान के अलावा कोई और कुरान लाओ, ये बड़ा सख्त है, इसके उसूल बहुत टाइट हैं, जरा लिबरल हो, जरा आजादी हो, ये भी करें वो भी करें, तो ऐसा कोई कुरान ले आओ और बदली लो, या तो एक दूसरा ही कुरान लेकर आओ। तो मुझे समझ में आता है कि ये जो इस वक्त दुनिया में जो लहर चल रही है, जो इस्लाम को जो है मतलब ये है कि उसकी हैयत बिगाड़ दें और मोदी फरमा बरदार इस्लाम बना दें, जिसका नाम उन्होंने सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम रखा है, ये आपकी कोशिश नहीं है। ये तो कुफार मुशरिकीन कहते थे कि भाई तुम्हारा कुरान सख्त है, जरा नरम कुरान लाओ, जरा चेंज करो इसके अंदर, या बिल्कुल ही चेंज करके एक नया दीन लेकर आओ, ये डिमांड उनका पुराना था। कुरान ने इससे आगाह किया, ये पहली बार नहीं, बार बार सदियों में समाज में तुम्हारे सामने ये वाक्य होता रहेगा। मुझे ये कुरान कहता है लतुबलउन्ना, तुमको हम जरूर आजमाएंगे, फी अमवालिकुम अनफुसिकुम, तुम्हारे मालों में भी और तुम्हारी जानों में भी, और तुम जरूर सुनोगे मिनल लदीना उतुल किताब मिन कबलिकुम, इससे पहले जिनको किताब दी गई उन लोगों की तरफ से, यानी यहूद और नसारा की तरफ से, व मिनल लदीना अशरक और मुशरिकीन की तरफ से, यहूद नसारा मुशरिकीन ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे खिलाफ इस्लाम के खिलाफ करेंगे, अज़न कसीरा, दिल को बहुत तकलीफ होगी, आएगा वो जमाना। कुरान ने बताया ये नई बात नहीं है, ये जमाने में होता रहेगा कि सब लोग बातें बनाएंगे, बिल ले आएंगे आपके खिलाफ, को जो है टीवी में चर्चा करेंगे, किताबें लिखेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये सब कुछ होगा, अदन कसीरा, तकलीफ दबाते सुनने को मौका मिलेगा तुमको, ऐसा होने वाला है, कुरान ने हमको आगाह किया था। वही तस्वीर वतन रखो, तुमको अपने मौकफ में जमे रहना चाहिए, तुमको जरा बराबर एक इंच अपनी जमीन छोड़कर नहीं देना चाहिए, आपने अपने मौकफ में खड़े रहना, वही तस्वीर वतन रखो, और खुदा का तकवा इख्तियार करना। जब बात में आकर हम जो है किसी और के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकते, वही बात कहेंगे जो बरहक हो, अगर ये रवैया इख्तियार करो तो फैनजाले के मिनाजमिल उमूर, ये पुख्ता इरादे वालों का, ये बड़े अज़्म और हौसले वालों का काम है, छोटे लोगों का काम नहीं है। क्या ऐसे जमाने में जबकि तूफान बदतमीजी जो तूफान बदतमीजी उठा हुआ हो, इस तूफान के खिलाफ खड़े रहना और अपने आप को साबित कदम रखना, ये कोई मामूली लोगों का काम नहीं। बहुत से खस्व खाशात की तरफ बहने वाले इस वक्त दुनिया में बह रहे हैं जो तिनकों की माने में, लेकिन जो तहरीकात थी वो अपनी जगह खड़े हुए हैं और वो दुनिया के सामने इस्लाम की सही तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये जो मौजू था हमारा, इसके एक मौजू पर मैंने बात की, दूसरे मौजू को मैंने थोड़ा सा टच किया, वो ये कि आने वाले जमाने में हमारे पास भी आइडिया क्लियर नहीं है कि 2000 के इलेक्शन हम चाहते क्या है, पूछ लीजिए किसी से, आइडिया ही नहीं है। हमारा हर कार्य बोलेगा उन्होंने आना, फिर क्या होना चाहिए, इनो आना, उनो आए इनो आए दोनों बराबर हुए, इनकी कारस्तानी अभी बहुत लंबी है, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं, जमजम से नहा कर नहीं आए हुए, हम चाहते क्या है, हमारे पास भी आइडिया क्लियर नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया जहां हर एक के लिए आजादी हो, जहां मसावात हो, जहां फ्लरिश करने वाले हो, जहां डेवलपमेंट हो, जहां जो वेलफेयर स्टेट का एक नक्शा हो, कोई आइडिया हमारे पास भी नहीं है। हम भी यही चाहते जो आम लोग चाहते हैं, हम उसी जो है उसमें रौ में बह रहे हैं, تو آنے والے انتخاب کے سلسلے میں جماعت اسلامی نے خاکہ پیش کیا, نقشہ پیش کیا جس کا سرکولر آیا ہے, جو ذمہ دار آپ تک بتائیں گے. اس میں کچھ کام امت مسلمہ کے لیے کرنے کا ہے, لیکن اس میں بھی ہم لوگ صرف امت کی طرف زیادہ متوجہ ہیں, اور عام انسانوں کے لیے, عام ہندوستان کے لیے, عام کرناٹک کے لیے ہمارا ویژن کیا, ہمارا نقشہ کیا, ہمارا آئیڈیا کیا ہے, اسٹل ویئر ناٹ کلیئر اباؤٹ اٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے زمانے میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.